दीवा की कजिन इनाया का एक्सीडेंट हो गया था। दीवा इस बात से अनजान थी कि उसका एक्सीडेंट जिसने किया है वो कोई और नहीं आर्यांश की कजिन सिस्टर वर्तिका कपूर थी। वर्तिका एक फेमस एक्ट्रेस थी, फिर भी दीवा ने उसे नहीं पहचाना। वर्तिका के वहां से जाते ही डॉक्टर आई, उसने इनाया को चेक किया और फिर दीवा से बोली, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक से चलने फिरने में कम 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। आप रोज इनके बैंडेज चेंज करवाते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच, दीवा ने कहा और फिर इनाया का डिस्चार्ज करवाकर उसे अपने घर ले जाने लगी। दीवा का ज़्यादातर टाइम जहाँ लंदन में बीता था, वहीं इनाया पूरी तरह मुंबई में ही पली बढ़ी थी और उसे सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। वो तो वर्तिका को देखते ही पहचान गई थी। गाड़ी के अंदर आते ही इनाया ने चहकते हुए कहा, दीदी क्या आप जानती हैं जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था वो एक सुपरस्टार है? दीवा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो हमेशा से करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड रही थी, इस वजह से उसे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। क्या सच में वो बहुत फेमस है क्या? दीवा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, उसका नाम वर्तिका कपूर है और वो एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इनाया ने कहा और एक पल के लिए वो खो गई। वो भी वर्तिका की तरह एक फेमस शख्सियत बनना चाहती थी। दीवा ने आगे कुछ नहीं कहा। वर्तिका और आर्यांश का सरनेम सेम था तो एक पल के लिए दीवा को ख्याल आया कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन वो सीधे जाकर आर्यांश से इस बारे में नहीं पूछ सकती थी। ज़रूरी नहीं जिनका सरनेम सेम हो वो एक दूसरे के रिश्तेदार ही निकले। बात करते हुए इनाया की नज़र दीवा की तरफ गई तो वो बोली, क्या हुआ दीदी, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है? हाँ, हॉस्पिटल में बहुत काम होता है, ऊपर से थीसिस लिखने के चक्कर में ठीक से सो नहीं पाती, आज तो 2 सर्जरी भी थी, दीवा ने जवाब दिया। अगर आप काम के चक्कर में इतना थक जाती हैं तो आप ये जॉब छोड़कर हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? इनाया ने उसे सुझाव दिया। नहीं इनाया, अभी उसमें बहुत टाइम है, वैसे भी ये बिजनेस वगैरह मुझे समझ नहीं आता है, दीवा ने जवाब दिया। तो फिर आप वापस पियानो बजाने क्यों नहीं लगती? आपको एक पियानिस्ट बनना था, फिर आप डॉक्टर क्यों बनी? डॉक्टर के काम में बहुत मेहनत लगती है और आप कितना थक जाती होंगी, इनाया बोली। उसे दीवा की बहुत फिक्र हो रही थी। नहीं इनाया, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ और उनकी जान बचाती हूँ तो दिल को एक सुकून सा मिलता है, दीवा ने थोड़ा इरिटेट होकर जवाब दिया। उसके बात करने के तरीके से इनाया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। शायद दीवा ज्यादा थकी हुई थी, इस वजह से वो चिढ़कर बात कर रही थी, वरना वो हमेशा इनाया से काफी प्यार से पेश आती थी। इनाया ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके चुप होने पर दीवा समझ गई थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरा भला सोच रही हो, लेकिन सच में मुझे अपने काम से प्यार है। अभी तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इनाया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दीवा ने तुरंत उसे मना लिया था। जल्दी ही वो दोनों गोइंका मेंशन पहुंच चुके थे। इनाया के पैर में चोट लगे होने की वजह से दीवा ने उसे बाहर निकलने में मदद की। वो उसे दरवाजे के पास लेकर गई, लेकिन दीवा के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो जानती थी कि प्रार्थना उससे अभी तक नाराज है, ऐसे में वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। दीवा को वहीं पर रुका हुआ देखकर इनाया ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप अंदर नहीं आएंगी? दीवा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर दरवाजा खोला। जैसे ही वो दोनों थोड़ी आगे बढ़ी, उन्हें प्रार्थना दिखाई दी। प्रार्थना की नजर भी उन दोनों पर पड़ गई थी। वो जल्दी से इनाया और दीवा के पास पहुंची। इनाया के चोट लगी देखकर प्रार्थना घबरा गई थी। उसने जल्दी से पूछा, इनाया बेटा ये सब कैसे और कब हुआ? बड़ी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक छोटी सी टक्कर लग गई थी, दीदी मुझे हॉस्पिटल लेने आ गई थी, इनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया ताकि प्रार्थना उसे देखकर और न घबरा जाए। प्रार्थना ने उसकी बात पर हामी भरी, फिर वो अंदर आने लगी। दीवा भी उनके पीछे दबे कदमों से चलकर आ रही थी। पिछली बार प्रार्थना ने जो भी किया था उसके बाद से दीवा को अंदर आते हुए डर लग रहा था। इनाया को बिठाने के बाद जैसे ही दीवा बैठने को हुई, उसके कानों में प्रार्थना की तंज भरी आवाज गूंजी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रार्थना को अचानक इस तरह गुस्से में देखकर इनाया और दीवा दोनों ही चौंक गई थी। दीवा को लगा प्रार्थना भूल गई होगी, वहीं इनाया को अपने कानों पर नहीं हो रहा था कि प्रार्थना दीवा से इस तरह कभी बात कर सकती है। मॉम वो, दीवा अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रार्थना ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। प्रार्थना ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, बाहर चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मॉम, दीवा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने इस फैमिली को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उसने आर्यांश का प्यार, गुस्सा, जबरदस्ती सब कुछ सहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को उन बुरे हालातों से निकालने के लिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मेरे सामने ये मासूम बनने का दिखावा मत करो, प्रार्थना ने उसी कड़वाहट के साथ कहा। जैसे जैसे उसे दीवा के खिलाफ सबूत मिल रहे थे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे नहीं पता मॉम आप किसके बारे में बात कर रही हैं, मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, दीवा ने अपनी सफाई में कहा। प्रार्थना ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी छोटी बहन यहाँ पर बैठी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर वो भी तुम्हारी तरह हरकतें करे। मैं ज्यादा कुछ बोलकर इसके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, कल को ये भी तुम्हारी तरह बिगड़ जाएगी और फिर आकर झूठ बोलेगी, बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ दीवा। इनाया उन दोनों के झगड़े से काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने आज तक उन दोनों को कभी झगड़ करते नहीं देखा। हालांकि प्रार्थना एक स्ट्रिक्ट मॉम थी, पर उन्होंने दीवा को घर निकलने और इस तरह के शब्द कभी नहीं कहे थे। वो उनके झगड़े को रोकने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन प्रार्थना उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बड़ी मॉम, दीदी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है, आप प्लीज उन पर यकीन कीजिए, इनाया बोली। वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर में दर्द होने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। परेशानी में दीवा ने अपने सिर को पकड़ लिया था। वो जानती थी कि जब लोगों को आर्यांश और उसके रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो सभी उसे गलत समझेंगे और गलत नजरों से देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे उसकी खुद की मॉम तक ठुकरा देंगी। दीवा नहीं चाहती थी कि इनाया के सामने कोई तमाशा बने। वो बोली, मुझे अभी जाना होगा मॉम, और हॉस्पिटल में बहुत काम है, मैं अभी नहीं रुक सकती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। तुम पागल हो गई हो, किसी को यहाँ तुम्हारे आने का इंतजार नहीं है, प्रार्थना ने गुस्से में कहा। दीवा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। अगर वो प्रार्थना को सब सच बताती तो वो टूट जाती, उसे ये दर्द अकेले ही सहना था। दीवा प्रार्थना और नवीन को ये कभी पता नहीं चलने दे सकती थी कि अपनी कंपनी बचाने के लिए उसने खुद का सौदा किया था। अगर उन्हें सच पता चलता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाते। दीवा वहां से जाने लगी। इनाया ने प्रार्थना से कहा, बड़ी मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हें देखकर लग रहा है कि सच में मेरी परवरिश जाया नहीं गई, वरना दीवा ने जो किया उसके बाद मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, प्रार्थना ने तेज आवाज में कहा, तो दीवा के कानों में उसकी आवाज पड़ी।
दीवा को प्रार्थना की बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वो गाड़ी के अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे यही लग रहा था कि उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश ऑफिस से लौट चुका था और दीवा का इंतजार कर रहा था। उसे दीवा का वेट करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर सिस्टर लीजा ने दीवा की अपडेट नहीं दी होती तो आज वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता। पता नहीं ये लड़की आज फिर कहाँ रह गई, इतना टाइम लगता है क्या अपनी कजिन को घर छोड़कर आने में? मेरे पास करने को हजारों काम है, लेकिन मैं इसका वेट क्यों कर रहा हूँ, आर्यांश ने इरिटेट होकर कहा। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, तभी दीवा ने दस्तक दी। उसने दीवा के चेहरे की तरफ देखा तो वो थकी हुई लग रही थी और उसकी आंखें भी लाल थीं। दीवा का चेहरा देखकर आर्यांश समझ गया था कि आज फिर वो किसी तकलीफ से गुजरी थी। उसे इस तरह परेशान देखकर आर्यांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आ गई तुम, आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया, तुमने खाना खा लिया क्या, दीवा ने जवाब दिया। वो आर्यांश से नजरें नहीं मिला रही थी, उसकी आंखों में इस वक्त बहुत दर्द था और वो नहीं चाहती थी कि आर्यांश को उसकी तकलीफ जरा भी महसूस हो। नहीं मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा ने उसकी बात पर हामी भरी और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। सुमन ने पहले ही खाना लगा दिया था। दीवा को इस वक्त देखकर यही नजर आ रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है, तो वहीं आर्यांश को गुस्सा आ रहा था। आर्यांश ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, अगर खाने का मन नहीं है तो मत खाओ। इस वक्त आर्यांश के गुस्से की वजह ये थी कि वो कुछ दिनों से दीवा से दूर था। उसे लगा कि दीवा की कंडीशन ठीक हो जाएगी, लेकिन वो हर रोज ऐसे घर आती थी जैसे अगले ही पल मरने वाली हो। ऐसी हालत में वो उसके करीब भी नहीं आना चाहता था। ओह, दीवा ने इतना ही कहा। वो अपना रोना मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थी। ऊपर से उसे पता था कि आर्यांश उसके साथ ऐसा ही रूड बिहेव करेगा, कहीं ना कहीं उसे इसकी आदत हो गई थी। आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा, ओ ये क्या जवाब हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी लग रही है जैसे अगले ही पल मर जाओगे। वो दीवा के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, उसे अडोर करना चाहता था, पर दीवा तो उसकी तरफ ठीक से ध्यान तक नहीं दे रही थी। उसे कहीं ना कहीं खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो आजकल दीवा पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट रहने लगा है, उसकी वजह से आर्यांश का मूड भी उखड़ा हुआ रहता था। वहीं दीवा का फ्रस्ट्रेशन अब उसके बस से बाहर हो रहा था। प्रार्थना ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया था और अब आर्यांश भी शुरू हो गया था। दीवा ने उसकी तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, मैं इंसान नहीं हूं क्या जो तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, या मुझे फील नहीं होता है? ये पहली बार होगा जब दीवा ने उसके घर पर आने के बाद आर्यांश के सामने अपना गुस्सा दिखाया होगा, वरना वो आर्यांश के हिसाब से ही चल रही थी। तो वहीं उसका ये जवाब सुनकर आर्यांश सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। चलो आज दीवा ने खुद के लिए आवाज उठाई है, देखते हैं आर्यांश का क्या रिएक्शन आता है। वैसे तो वो गुस्सा ही होगा, लगता है एक बार फिर उनके बीच में एक बड़ी फाइट होने वाली है।